सन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक भाद्रपद शुक्ल एकम संवत 2050 तदनुसार दिनांक 18 अगस्त 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम
पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण।
प्रश्न पूछने वाले भाई बहनों से कहना है कि पुर्जा दे लिखे तो वो बात पूछे जो अपना साधन कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उसमें हमारे बाधा आती है, वो बाधा का प्रश्न करे तो बड़े लाभ की बात होगी। अब भगवान हरि नाम से कब से पढ़ा, भगवान हरि उतार क्यों क्या लिया, क्या मतलब, किसी कोई मतलब सिद्ध नहीं। भगवान का अनादि नाम है, अनादि भगवान है और गजेंद्र मोक्ष करने के लिए हरि अवतार लिया। भागवत सुनने वालों के लिए कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, भागवत महात्म्य है, 6 अध्यायों का पहले उसमें वर्णन है, जो महाराज बताएंगे तो बता देंगे, उनमें नहीं है आप देख रहे हैं, भागवत मिलती है भाषा टीका तो उसमें होगा आप देख रहे हैं। मुक्ति वैकुंठ या मोक्ष एक ही या इसमें कोई अंतर है, ये संप्रदाय की दृष्टि से है। वैष्णव संप्रदाय के अनुसार भगवान के वैकुंठ में जाना वह 4 तरह की मुक्ति है, कहीं 5 तरह की बताई है, वो वैष्णव की मुक्ति वैकुंठ की है, उसमें भी गोलोक है और जो सत्यलोक है और वैकुंठ लोक है, ऐसे भेद है, वो एक ही बात है, जब मन से रहित हो जाते हैं। कहते ऋषि मुनि हर जन्म में प्रभु की भक्ति क्यों मांगते हैं, उनको भक्ति अच्छी लगती है, स्वास्थ्य मांगते हैं, आप धन क्यों मांगते हैं बताओ। अर्थात मुक्ति अच्छी है या बार बार लेकर भगवान की भक्ति करना अच्छा है, कोई कम नहीं है, दोनों ही श्रेष्ठ है, अपनी अपनी संप्रदाय के अनुसार उसको श्रेष्ठ कहते हैं। भक्ति मार्ग वाले ज्ञान से भक्ति को श्रेष्ठ करते हैं और भक्ति मार्ग वाले ज्ञान से भक्ति को, ज्ञान वाले ज्ञान भक्ति से ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं। भगवत गीता का अध्ययन करने से मालूम होता है कि भगवान की भक्ति की विशेष महिमा है। मैंने पढ़ाई अद्वैत सिद्धांत की है, शंकर मत की पढ़ाई की है, वर्षों तक परीक्षा दी है, वो पढ़ा हुआ है, वे संस्कार मेरे में मुख्य है। भक्ति में जो गीता पढ़ता हूँ तो गीता मैं पहले से पढ़ता हूँ, पहले से गीता का पाठ करता हूँ, पढ़ता हूँ, किसे पढ़ाई शुरू करी, संस्कृत की पढ़ाई शुरू करी, तब न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न भावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। ये श्लोक सिखाया था, मैं जानता नहीं कहाँ का श्लोक है, क्या मतलब है कुछ पता नहीं। परीक्षा की ये लड़का संस्कृत कैसा पढ़ सकता है, इस वास्ते पहला श्लोक सिखाया, तो पहला श्लोक यही सीखा मैंने। पीछे व्याकरण पढ़ने लग गए, पढ़ा है तो अद्वैत सिद्धांत की बातें बहुत ही अच्छी बात मालूम देती है और कल्याण करने वाली है, ठीक है। गीता के पढ़ते पढ़ते मेरे विलक्षण दर्शन भाव पैदा हुए। मेरा विचार था कि कोई पक्षपात न रख करके भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग कोई मार्ग हो चलता है, योग मार्ग कर्म योग का मार्ग इतना प्रसिद्ध नहीं है, तो पहले मेरे इस विचार में नहीं था। गीता के पढ़ने से ज्ञान योग और कर्म योग दो मिले, ये बात आई, और भक्ति योग भी मिला। पढ़ते हुए भी अद्वैत सिद्धांत की ही मुख्यता रही, ज्ञान मार्ग की मुख्यता रही। पढ़ते पढ़ते विचार हुआ तो अब कुछ और बात ऐसी विलक्षण मालूम देती है कि ज्ञान मार्ग कोई कम नहीं है, परंतु ज्ञान मार्ग भी सुगमता से कैसे तय कर ले और भक्ति मार्ग भी कैसे तय कर ले, योग मार्ग भी कैसे हम तय कर ले, इस विषय में मेरे को संतों से गीता से बातें मिलती रहती है, अब भी मिलती है। तो किसी मार्ग से हो, अंत में तत्व एक ही होगा और उसकी प्राप्ति होगी। भक्ति ज्ञान माने मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने, तो भक्ति में कुछ विलक्षणता है। ज्ञान मार्ग में अखंड आनंद है और ज्ञान भक्ति मार्ग में प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम का लक्षण लिखा है, प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। लिखा है कि जैसे चंद्रमा प्रतिपदा से बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते पूर्णम आ जाती है, परंतु भक्ति मार्ग में पूर्णम नहीं आती, बढ़ता ही रहता है। श्री शंकराचार्य महाराज भी लिखते हैं कि दिने दिने नवम नवम नवामि मंद संभवम, तो दिन प्रतिदिन नया एक आनंद आता है। ऐसे भक्ति की विलक्षणता है और जगह, और गीता में भी देखा जाए तो भक्ति की विलक्षणता लिखी है। इसका अर्थ ज्ञान और कर्म दो बात है, ये योग ये कोई कमजोर नहीं है, कल्याण करने में मुक्ति करने में कमजोर नहीं है, परंतु जहाँ निष्ठा का वर्णन आया है वहाँ लोकेशमिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघा, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा बताए योग। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है आरंभ में, उसके उत्तर में कहा कि दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु इस लोक में निष्ठा दो ही है, एक ज्ञान निष्ठा और एक योग निष्ठा, मानो कर्म योग और ज्ञान योग दो निष्ठा ही बताई है, भक्ति की निष्ठा नहीं बताई है। अस्मिन लोके बता लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा, तो इसका तात्पर्य है कि मनुष्यों की निष्ठा दो तरह की है और भगवान के भक्ति करने वालों की निष्ठा भगवान पर होती है, वो अपनी नहीं है, वो भगवान की है, भगवान को अर्पण कर देते हैं। एक ये नई बात मालूम देती है, दो निष्ठाओं से अलग है वो। ऐसे ही भक्ति का वर्णन बहुत विशेष कार्य भगवान ने किया है। 18वें अध्याय में अर्जुन ने संन्यास और त्याग के विषय में प्रश्न किया है। संन्यास मानो सांख्य योग, त्याग मानो कर्म योग, इन दो की बात पूछी है भगवान में। 18वें अध्याय की बात पहले ज्ञान योग, पहले कर्म योग की 12वें श्लोक तक, और 13 से 40 तक ज्ञान योग, 41 से 48 तक फिर कर्मयोग भक्ति में से थे, और 49 से 50 तक 55 तक फिर सांख्यों की बात और 56 से 66 तक अंत में भक्ति योग की बात बताई है। बहुत ही अच्छा प्रकरण है। तत्पश्चाति संजीवनी उसके 18वां अध्याय और 56 से 66 तक 11 श्लोक बहुत ही श्रेष्ठ है। तो भक्ति योग की बात बताई और अंत में सर्व कुशतम कह करके मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैसे सत्यंते प्रजाने प्रियोशी में और सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच भक्ति में उपसंहार किया है। अर्जुन शरण हुए तब गीता चली शरणागति में समाप्त की है। तो गीता में भक्ति की महिमा बहुत ज्यादा की गई है परंतु ज्ञान को कम नहीं बताया है। ज्ञान कोई कम है मामूली चीज ऐसा नहीं बताया है। नहीं ज्ञानेन सदेशम पवित्र में विद्यते ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं जो बोध होता है परमात्मा का। तत् स्वयं योग संसद वो ज्ञान कर्मयोग से सिद्ध होने वाले को आप साफ मिलता है। तत् स्वयं योग संसद काले ना तो निबंधते उसको जरूर कोई बोध हो जाता है। जो ज्ञान योग में चल करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं वे कर्मयोग में चलकर उसी ज्ञान को प्राप्त कर ले। बड़ा युक्ति संगत ऐसा भगवान ने वर्णन किया है। और भक्ति योग की बात तो अलादी है वो तो भगवान की बात है। भक्ति में 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने समग्र रूप कहने की प्रतिज्ञा की है। 6वें अध्याय तक कर्मयोग की प्रधानता मानते हैं इसमें ज्ञान योग भक्ति योग आया है। परंतु 6वें अध्याय के अंत में योगी की महिमा करी है। योग भ्रष्ट का प्रकरण पूछा है इसमें योगी की महिमा करी है। तपस्वी भ्यो दिवो योगी ज्ञानी भ्यो विमतोधिका कर्मी भ्यस्ता दिवो योगी तस्मात योगी भर्तु योग बन जा। तो यहाँ ध्यान योग का वर्णन विशेष है और कर्म योग का है साधन वर्णन। वो योग श्रेष्ठ बताया उसमें बसे पिता भगवान कहते हैं 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में योगी नाम अपनी सर्वेशाम जितने की योगी है कर्म योगी ज्ञान योगी भक्ति योगी लय योगी हठ योगी राज योगी अष्टांग योगी अनाशक्ति योगी योगी कई है। योगी नाम अपनी सर्वेशाम जितने योगी है संसार में उन सब में मदगत अंतरात्मना जिसका मन मदगत हो गया है और श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करते हैं समय युक्त तमो मत वो योगियों में युक्त तम है मानो सब योगियों में वो श्रेष्ठ है ऐसा भगवान ने कहा है। 6वें अध्याय का अंतिम 12वें अध्याय का दूसरा और 12वें अध्याय का 20वां और 7वें अध्याय 29 और 30 ये और पहला 7वें अध्याय का पहला ये श्लोक आप देखें तो बहुत विलक्षण बात आपको मिलेगी। शादी संजीवनी ये बात लिखी भी है थोड़ी कम रह गई होगा मैं आप विचार करो। वो योगी है उसमें भगवान ने एक विलक्षण बात कही 7वें अध्याय में जैसे भक्त के सामने भगवान की बात करने से भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे ही भगवान भक्ति की बात पूछने से भक्ति की बात करने में बहुत ज्यादा राजी होते हैं। तो 6वें अध्याय अंत किया 7वें अध्याय में श्री भगवान उवाच है अर्जुन उवाच नहीं है। भगवान ने अपनी तरह से अपनी तरफ से ही ये भक्ति योग का वर्णन किया है। 7 से 12 तक भक्ति योग बीच में माना जाता है। पहले 6 अध्याय कर्म योग के बीच में भक्ति योग के आगे ज्ञान योग के ऐसा मधुसूदनाचार्य ने लिखा है। तो भक्ति योग का वर्णन करते हुए मैया जी 6वें श्लोक का अंत में वही भाव 7वें अध्याय के आरंभ में है मदगतेर अंतरात्मना तो मैया शक्त मना पार्थ अर योगम युंजन मदाश्रय और आसन स्वयं समग्र मां यथा अध्यास दर्शन हो तो मेरा भाव रखकर मेरा व्रत करने वाले श्रेष्ठ होते हैं, ये मेरे से सुनो, ऐसी बात कही। इसमें एक विलक्षण बात बताई, सातवें अध्याय के आरंभ में आसन स्वयं समग्र मां यथा अध्यास समग्र रूप हो जानेगा, भगवान का समग्र रूप है, ज्ञान एक रूप है, साकार एक रूप है और ये समग्र रूप है, तो आप समग्र रूप में जानेगा। तो समग्र शब्द एक कर्मों के लिए आया है चौथे अध्याय में, तेईसवें में समग्रम प्रविलीयते और यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, तो कर्मों के विषय में बताया है। वहाँ प्रारब्ध संचित क्रियमान सब कर्म लीन हो जाते हैं समग्र, और यहाँ समग्र भगवान का स्वरूप समग्र, जिसमें सगुण भी निर्गुण भी साकार भी निराकार भी विश्व रूप भी सब मिलकर भगवान का पूरा समग्र रूप है। इसमें किसी एक रूप का ध्यान करो भजन करो मुक्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। परंतु अर्जुन पर खुश होकर के जब अंत में ये भगवान ने कहा कि वो श्रद्धावान भजते योगाम समय युक्ततमो मता, वो बड़ा श्रेष्ठ पुरुष है, तो ऐसे कहने से जैसे भगवान को भक्त को भगवान की याद आ जाए, ऐसे भगवान को भक्त की बात याद आ गई, तो बिना ही पूछे सातवां अध्याय शुरू कर दिया भगवान ने, सातवां अध्याय कर दिया। सातवें अध्याय के अंतिम दो श्लोक 29 और 30 दो श्लोक है, उसमें जरा मरण मोक्षाय माम आश्रत्य संतिये, मेरा आश्रय लेकर जो जतन करते हैं ते ब्रह्म तद्विद हुए, ब्रह्म को जान जाते हैं, कृष्ण अध्यात्म को जान जाते हैं, कर्म को जान जाते हैं, अधिभूत को जान जाते हैं, अधिदेव को जान जाते हैं, अधियज्ञ को जान जाते हैं, ये छह बातें, ये समग्र रूप की बात है, भगवान का समग्र रूप। समग्र रूप में ब्रह्म रूप भी एक है, ते ब्रह्म तत्व ब्रह्म रूप जान जाएंगे, ब्रह्म रूप की बात खास करके ज्ञान मार्ग की है, तो वो भी एक भक्ति का एक अंश है, उसमें भी कल्याण हो जाएगा उद्धार हो जाएगा उससे नहीं। और भगवान ने समग्र रूप की विशेष बात कही है, उस समग्र रूप का वर्णन किया भगवान ने। इस समग्र रूप के विषय में अर्जुन ने सातवें अध्याय आठवें अध्याय में सात प्रश्न कर लिए, तो सात प्रश्नों का भगवान ने संक्षेप में उत्तर दे दिया, और सात ही श्लोकों में आठवें श्लोक से फिर समग्रता का वर्णन करते हुए भगवान ने स्वयं कहा, और आठवां कहकर नौवां फिर भगवान ने अपने शुरू कर दिया, और फिर दसवां अपने आप शुरू कर दिया। ये भक्ति की मस्ती में आते हुए नहीं रखी, अपना ये उम्र गया भाव विश्वास ऐसे वर्णन किया है। दसवां अध्याय के अंत में कहते हैं मेरे अंश में जगत है, तो अंश में कैसे हैं वो बात पूछी, तो विराट रूप देखा दिया, मैं देखना चाहता हूँ, तो वर्णन तो कर दिया देखने रूप ने कहा। इस वास्ते पश्चिम योग में श्लोक नौवे अध्याय में भी कहा, और दिद्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योग में श्लोक ग्यारहवें अध्याय में कहा, तो समग्र रूप का भगवान ने दर्शन कराया। इसके बाद में बारहवें अध्याय में जब अर्जुन ने पूछा कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है कि भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि पहले ज्ञान की महिमा भी बहुत आई है और भक्ति की महिमा, तो ग्यारहवें अध्याय के अंत में साधन पंच गए पांच बातें बताई, मत कर्म कर्ण मत परमो मत भक्त संग वजिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह सब हमें पांडव मेरे को प्राप्त होता है, ऐसे बातें बताई, तो भक्ति की विशेष महिमा कही। तब अर्जुन ने बारहवें अध्याय में पूछ लिया, पूछने पर कहा कि भाई वे जो अव्यक्त की उपासना करते हैं निराकार की, वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में चलने वाले हैं उनका मैं उद्धार करता हूँ। सातवां आठवां श्लोकों में छठा सातवां इन श्लोकों में कहा कि उनका बहुत जल्दी मैं उद्धार कर देता हूँ, भक्ति मार्ग की विशेष महिमा कही। अरे भक्ति योगी नाम है बारहवें अध्याय का, बारहवां और पंद्रहवां अध्याय ये भक्ति प्रधान अध्याय है, तो उसमें भक्ति की बात विशेषता से कही। भक्ता भक्त है वे जो साधन भक्त साधक भक्त है वे अत्यंत प्यारे हैं, जैसे छठे अध्याय में कहा वैसे ही सातवें अध्याय के बारहवें अध्याय के दूसरे श्लोक में मैया वेश मनो याम यो माम नित्य उपासुते श्रद्धया पर योगे में युक्त तमा मता छठे अध्याय में स में युक्त तमो मता बारहवें में ते में युक्त तमा मता अक्षर वही एक वचन बहुवचन का फर्क है। तो इनको भगवान श्रेष्ठ मानते हैं और बारहवें के बीच में भक्तास्ते अतीव में प्रिया भक्त मेरे को अत्यंत प्यारे हैं ऐसे भक्ति की बात विशेषता से कही। इसके बाद जो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में दोनों कौन श्रेष्ठ है तो भक्ति मार्ग के क्या करके और तेरहवा अध्याय भगवान ने अपने आप से ज्ञान मार्ग कहने के लिए शुरू कर दिया ऐसे चौदहवा अध्याय फिर शुरू कर दिया ज्ञान मार्ग के लिए ये दोनों अध्याय। अर्जुन ने बारहवें अध्याय में भक्ति और ज्ञान की बात पूछी भक्ति कह ज्ञान की बात कह दी और ये चौदहवा अध्याय तेरहवें अध्याय का ही परिशिष्ट है। उसमें प्रकृति और पुरुष का विवेक है इसमें गुणों का आत्मा का विवेक है चौदहवा में इतना फर्क है। पंद्रहवें में फिर भक्ति का वर्णन किया सोलहवें में भक्ति के अधिकारी ज्ञान के अधिकारियों को देवी संपत्ति संपत्ति गई आगे सत्रहवें में तीन तरह की श्रद्धा बताई और संन्यास और त्याग दोनों के विषय अठारहवें अध्याय में कहे ऐसे गीता में कहा। तो निष्पक्ष सरलता से देखने पर भक्ति की बहुत महिमा है और उसे मेरे समग्र रूप को जान लेता है भगवान के समग्र रूप को जान ले तो मुक्ति हो जाए और प्रेम हो जाए और भगवान के ज्ञान रूप से जान ले तो कल्याण हो जाए। संदेह नहीं भगवान के तो नाम जप में रात दिन लग जाए तो कल्याण हो जाएगा किसी तरह से भगवान के सन्मुख हो जाए उसको पकड़ो तो उसे संदेह नहीं है। अब उसमें किसी को भक्ति प्यारी है किसी को ज्ञान प्यारा है तो अपने अपने निष्ठा के अनुसार अनुष्ठान करो यह गीता कहती है। परंतु दोनों में अगर विचार किया जाए तो ज्ञान योग से भी कर्म योग को श्रेष्ठ बताया और सबसे श्रेष्ठ सब योगियों से श्रेष्ठ भक्ति योग को बताया योगिना सर्वेशम जितने योग उनमें भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया ऐसे गीता का विवेचन है। तो ज्ञान में भक्ति में कौन श्रेष्ठ है दोनों ही श्रेष्ठ है पर दोनों श्रेष्ठ होने पर भी भक्ति की महिमा बहुत विशेष है सर्वसु वैराग्य में तेज तपस्या माए और भक्ति की महिमा घने ज्ञान मुक्ति ज्ञान बनना है तो ज्ञान मुक्ति देने वाला ज्ञान है परंतु वो एक रूप सच्चिदान रूप से स्थित हो जाएगा ऐसा अखंड शांत घन आनंद है और भक्ति का आनंद है प्रतिक्षण वर्धमानम विशेष उत्साह आनंद प्रतिक्षण बढ़ने ही बढ़ने वाला आनंद है विश्वास की अनंत आनंद है ज्ञान का अखंड आनंद है और भक्ति का अनंत आनंद है। इसमें जैसी रुचि की रुचियों को करो कोई कम नहीं है मार्गों का कीर्तन किया है परंतु भगवान ने किसी का खंडन नहीं किया किसी को मामूली नहीं बताया श्रेष्ठता तो बता दी है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि नाम और रूप में कौन अधिक है कहने से दोष लगता है अपराध का उन्होंने इन दोनों में कौन से अपराध है परंतु गुण सुन गुण भेद से मुझे ही साधु समझ जाएंगे ऐसे कहकर भगवान ने भक्ति सगुण की बात भी विशेष बताई है रामायण में नाम से नामी की महिमा उस नाम की महिमा से भी नाम की महिमा बहुत कही है गीता जी रामायण जी में। तो नाम मात्र जपने से भी कल्याण हो जाएगा इसमें संदेह नहीं रात दिन नाम जपने लग जाए कोई काम बाकी नहीं सो रहेगा निर्गुण चाहे तो नाम जप है सगुण चाहे तो नाम जप है ये नाम जप सबके लिए बड़ा उपयोगी साधन है ऐसा वर्णन किया है। तो जन्म मन से रहित होना ये ठीक है सब रह जाते हैं तो जन्म मन से रहित ज्ञान मार्ग भी रहित हो जाते हैं भक्ति मार्ग भी जन्म मन से रहित हो जाते हैं। इतनी बात विशेष है कि भक्ति मार्ग में वैकुंठ आदि के लोकों में जाते हैं तो वहां से फिर जैसे भगवान का अवतार होए इसी तरह से भक्त वहां से संसार का उद्धार करने के लिए आ जाते हैं। कर्म पर्व जन्म नहीं होता जो हम लोगों का होता है कर्मों के वशीभूत होकर उन भोग के लिए पुण्यों की विशेषता स्वर्ग है पापों की विशेष नरक है और पापों की स्वर्ग लक्ष्योनी है और उनके मुक्ति करने के लिए उद्धार करने के लिए मनुष्य जन्म देते हैं तो एक कर्म परवश है, तो भगवान के वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वो कर्म वश के जन्म नहीं होता, जैसे भगवान जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं ऐसे भगवान के मर्जी से उनके बहुत दया हो जाने से यहाँ आ जाते हैं, परवशता उनके नहीं है, तो वो भी सदा के लिए मुक्त है, इसमें संदेह नहीं। संप्रदाय के अनुसार ज्ञान संप्रदाय वाला कहते हैं ज्ञान से ही मुक्ति होती है, उससे मुक्ति नहीं होती। भक्ति वाले कहते हैं ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, समग्र परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। भक्ति वालों को परमात्मा की प्राप्ति होती है और भक्ति वालों को ज्ञान भी आ जाता है। गोस्वामी जी भी कहते हैं अन इच्छत आवे पर्यायी, मोक्ष सुख है वो बिना इच्छा भक्तों को आता है। और कई जगह ऐसा लिखा है कि मुक्ति गर्ज करती है भक्तों की, विशेषता आने के लिए। इस वास्ते भक्ति उनको ज्ञान उनको हो जाएगा, भक्तों को ज्ञान न हो ऐसी बात नहीं है। समग्र रूप का ज्ञान ब्रह्म का, अध्यात्म कर्म का, अधिभूत देव अधियज्ञ का हो जाता है, उसमें भगवान की प्राप्ति होती है, ये बात है। अब कहते हैं पुरुषोत्तम मासना महात्म क्या है, तो महात्म पुरुषोत्तम मासना अपने मंदिर में होता होगा कथा, उनको आप सुनो, उसमें महात्म बताया है। और अभी यहाँ पर पंद्रहवा अध्याय शुरू किया तो यहाँ के सज्जनों की इच्छा हुई कि पुरुषोत्तम मास है तो पुरुषोत्तम अध्याय का ही विवेचन होना चाहिए, ना बहुत अच्छी बात, तो वो ही अभी हमने शुरू कर दिया है मनमोहन जी ने। और उनके दो श्लोक बताए, इसका तात्पर्य यह है कि पंद्रहवा अध्याय आपको याद हो जाए, इस बार से श्लोक बताया दो दो बार दर बार कह करके, एक चरण दो दो बार कहना, फिर एक साथ कहना, फिर दो चरण तीन चरण तीसरा और चौथा चरण कहना, फिर दोनों को साथ में कहना, फिर दोनों पंक्तियों को चारों चरणों को साथ में कहना, ऐसे एक चरण दूसरे श्लोक कहा, फिर एक चरण दो चरण ये दूसरे श्लोक के दूसरे उत्तरार्ध का कहा, फिर पूरा करना, फिर दोनों श्लोकों को साथ करना, ऐसे रोजाना पाठ कर दिया जाए तो ये पुरुषोत्तम अध्याय व्याख्या में भी हो जाए और श्लोकों को याद भी हो जाए। वो याद करने के लिए दोबारा एक एक चरण करके उठ लिया है। अभी जो ये पांच श्लोक कहे जाते हैं तो ये बात मन में आई कि भाई गीता का एक श्लोक करे तो भी उसके कल्याण हो जाता है, गीता का पाठ करने से कल्याण हो जाता है, और कल्याण नहीं हो तो गीता पाठ समायुक्त हो मृतो मानुषता मृत, गीता पाठ कर लेता है मनुष्य जन्म होगा, वहाँ गीता का अभ्यास करके मुक्त हो जाएगा, ऐसा माध्यम आया है। तो एक दो चार श्लोक तो याद होने ही चाहिए, इस उद्देश्य को लेकर के पांच श्लोकों का पाठ किया जाता है रोजाना। जो सुनने वाले भाई बहन स्वाभाविक ही याद कर ले, स्वतः ही याद हो जाए, बच्चों को याद हो जाता है, रोजाना सुन सुन याद हो जाता है, तो इन श्लोकों को रोजाना पढ़ते रहे। इस भाव बोले के पांच श्लोक जो भगवान के अवतार का विषय है वो लिया है, इस तरह से ये पाठ होता है, उसका कारण है। नारायण 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 नारायण, पुरुषोत्तम अध्याय जो पंद्रहवा अध्याय है बहुत विलक्षण अध्याय है ये, इसका पाठ प्राय लोग करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे स्नान करते हैं तो स्नान करते हुए कंठ से पंद्रहवा अध्याय का पाठ करते ही रहते हैं। साधु सन्यासी संत है वे भोजन करते हैं तो पहले पंद्रहवा अध्याय का पाठ करते हैं, तो पंद्रहवा अध्याय बहुत विशेषता से है गीता में। इस पंद्रहवा अध्याय का नाम शास्त्र बताया है, इति गुह्यतम शास्त्रम मिदमुक्तम मयानघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान शास्त्रकृत कृत्यस्य भारत। अंत में श्लोक है उसमें इसको शास्त्र पदविधि है, शास्त्रम मिदमुक्तम मयानघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान शास्त्रकृत कृत्यस्य भारत। अंत में श्लोक है उसमें इसको शास्त्र पदविधि है, गीता के 18 अध्याय में शास्त्र पदवी केवल 15वें अध्याय को मिली है और किसी को शास्त्र पूरा नहीं कहा। इसमें छह शास्त्रों में जो बातें आती है, आस्तिक नास्तिक अपने यहाँ पाश्चात्य यहाँ के जितने शास्त्र है उन शास्त्रों में जगत का जीव का और परमात्मा का विवेचन होता है। ये तीन जिसमें विवेचन होता है वो शास्त्र होता है, शास्त्रों ने शिष्टों उनकी शिक्षा देने के लिए। तो 15वें अध्याय में भी इस तरह से है। अब थोड़ा सा वो विशेष सुना देता हूँ, आप ध्यान देकर सुना। 15वां अध्याय कंठस्थ तो वो ठीक ही है, न हो तो पुस्तक देख लें। 15वें अध्याय के चार विभाग है, पांच पांच श्लोकों का, पांच और पांच और पांच और पांच, ऐसे 20 श्लोक है। तो पहला पांच श्लोक है, उसमें संसार का वर्णन है। किस लिए? वैराग्य के लिए। इस वास्ते इनसे वृत्ति उठाना तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्वा, ये भीतर में जो सुविरूढ़ मूल है वासनाओं से, इसका छेदन कर देना वैराग्य के द्वारा, राग रहित होना। संसार का वर्ण राग रहित होने के लिए कहा ये पांच श्लोक। इन पांच श्लोक के अंतिम बताया कि ऐसा वैराग्य होने से भी कल्याण हो जाता है। इसके बाद ममई वांशो जीव लोक, ये सातवां श्लोक होता है। तो परमात्मा का वर्णन किया 7, 8, 9, 10, तो 4 श्लोक तो उधर है, 11वां। तो 4 श्लोक हो गए, जो 4 श्लोक हो गए, एक ये छठा, ये 4-5 श्लोक ये है, एक छठा देना, 4 भी ले लेना। इससे ठीक तरह से इससे भी मुक्ति हो जाती है, बूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद 5 श्लोक आते हैं, 4 श्लोक आते हैं, 5 इस ममे वंश 5 हो गया, 4 श्लोक आते हैं, 12, 13, 14, 15, उसमें एक बोल रहे हैं ये ईश्वर का वर्णन, जीव का वर्णन, बीच में भूल गए। संसार का वर्णन है, फिर जीव का वर्णन है, फिर ईश्वर का वर्णन है। तो जीव के संसार के वर्णन करण से मुक्ति हो जाती है, तो मुक्ति क्या है उसमें न तद्भाषित ये श्लोक आया है। तो ये है ईश्वर का वर्णन, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परम मम, मेरा धाम है। तो ये एक श्लोक रहा, और 7, 8, 9, 10, 11 ये ईश्वर का वर्णन है, और 12, 13, 14, 4, 15 ये 4 श्लोक है ज्ञान का, एक श्लोक लेना छठा, ऐसे 5 श्लोक हो जाते हैं। ऐसे तीनों का 5-5 श्लोक, संसार का, जीवात्मा का और परमात्मा का वर्णन, और वे तीनों ही प्रकरण का उपसंहार है 15, 16, 17, 18, 19, 20। सब में एक एक प्रकरण में मुक्ति की बात बताई है, और सब प्रकरण में मुक्ति इसमें कहना ही क्या है। इस तरह से पुरुषोत्तम अध्याय के ये विषय है, इनको याद कर ले, मनन कर ले, तो बड़ा सुंदरता है, समझ में आ जाएगा, ये बात है। इसमें भगवान ने शास्त्र कहा, और शास्त्र भी कहा इति गुह्यतमम शास्त्रम, भक्ति की मुख्य ने गुह्यतम कहा, और योग मार्ग में रहस्यम हेतुतम, और गुह्य कहा राज, और भक्ति में राज भी, और राजगुह्यम और गुह्यतम सबसे श्रेष्ठ भक्ति में ये शब्द पड़े हैं। इस तरह से गीता में भक्ति की तरफ ज्यादा खिंचाव दिखता है, गीता के मनन करने से ये बिल्कुल विचित्र विचित्र भाव गीता में भरे हुए हैं, अपने प्यारे भक्त के प्रति एकांत में कहा है, और उसी जिज्ञासा होने पर कहा है, नहीं तो साथ में रहते हुए भी नहीं कहा। इस वास्ते भगवान का भजन करना, भगवान के आश्रित होना, भगवान के शरण होना, ये बहुत विशेषता से भगवद गीता में कहा है। तो ये पूछ लिया कौन सा क्या सेख है, सब श्रेष्ठ, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सब श्रेष्ठ, सब मुक्ति देने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु भक्ति के साधन कहो बखाने, सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी। रामायण लिखते हैं भक्ति के साधन से सुगम पंथ, एक विचित्र बात रामायण में आई है, मैंने सुनाई है, आप लोगों ने सुनी होगा, नहीं सुनी होगा, अब ध्यान देकर आप लोग सुने। एक होता है मार्ग, एक होता है स्वरूप, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग का वर्णन। तो गोस्वामी जी महाराज रामायण में सुगम पंथ बताते हैं, भक्ति के साधन कहो बखाने, सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी। और ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, परत कगेशन लागे वारा। ज्ञान का पंथ है वो कृपाण की धारा है। तो ज्ञान का मार्ग कठिन है, भक्ति का मार्ग सुगम है। और स्वरूप के विषय में वर्णन करते हैं तो निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना तीर्थ सुनि मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप को तो जल्दी जान सकते हैं और वर्णन भी किया जा सकता है, पर सगुण रूप के वर्णन में ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, इंद्र मोहित हो गए, काकवश जी हो गए, नारद जी हो गए। तो सुगम चरित है वो, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। तो स्वरूप तो सगुण का जानना कठिन है, निर्गुण का सुगम है, मार्ग भक्ति का सुगम है और मार्ग ज्ञान का कठिन है। ये गीता में रामायण माया संक्षेप से। अब इस विषय में कोई शंका हो तो पूछ लो भाई, फिर चले आगे। संक्षेप से बातें कही है, मैंने जैसी पढ़ी है, सुनी है, समझी है, अकल माई वैसी कही है। गीता के विषय में कुछ कहना है, अपनी बुद्धि का परिचय देना है। मन मैं ऐसा जानता हूँ, गीता ऐसा ही है, ये ठीक है, भगवान जाने, गीता का श्री कृष्ण जाने, माता जाने, सो पिता, ये बात है, भगवान जानते हैं अर्थ। और कहा है कि अन्य देश संदेश मात्र जान करके विवेचन करते हैं, भगवान जानते हैं किंत कुंती सुता फलम, ऐसा बताया है। याज्ञ याग बल के वेद लोग जैनक ये भी जानते हैं, ऐसा बताया है। भगवत गीता का महात्म्य, आप रामायण का महात्म्य, भागवत का महात्म्य देखो तो महात्म्य छोटा है, भागवत ग्रंथ है बड़ा। 18 स्कंध है, 12 स्कंध है, 18,000 श्लोक है। तो इतने श्लोक है, इतने प्रकरण है भागवत का, और एक जगह 6 अध्याय रहती है, 4 अध्याय है, ऐसे 10 अध्याय 2 जगह के महात्म से होते हैं। गीता के 18 अध्याय है, और पद्म पुराण में 18 ही अध्याय महात्म के हैं। श्लोक गिने जाए तो उसे 10-12 श्लोक है, गीता में 700 श्लोक है। गीता की अपेक्षा गीता का महात्म बहुत वर्णन है, उसकी ऐसे बड़ा पुराण मार्ग है भगवान। और योग वशिष्ठ में आता है गीता के महात्म के बाद, गीता का महात्म बहुत विशेष बताया है। 18 अध्याय 18 महात्म, 18 अध्याय तो पद्म पुराण में एक जगह ही है, और वैष्णव तंत्र सार में, बराह पुराण में, योग वाशिष्ठ में गीता की महात्मा आया, गीता का महात्म वर्णन किया है। गीता ऐसा श्लोक, ऐसा एक ग्रंथ है जिसमें विदेशी भी मानते हैं, विदेश में भी अध्ययन करते हैं तो नतमस्त होते हैं इनकी टीका लिखने के लिए। तो टीका जितनी ग्रंथ के गीता पर लिखी गई है, संस्कृत में बहुत गीता है, संस्कृत टीका ऐसे हरेक भाषा में, अंग्रेजी में, उर्दू में, और मेवाड़ी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में गीता पर टीकाएं लिखी हुई है, अनेक भाषाओं में। भाषाओं का अनुवाद तो बाइबल का ज्यादा हुआ, पर टीकाओं का गीता जैसा किसी ग्रंथ में मैंने नहीं सुना है। आप लोगों ने सुना तो बता देना, फिर कहना शुरू कर देंगे हमारे क्या, पर देखने में सुनना आया नहीं। बोलकर तो टीका लिखने में उसके मत को, मतलब वो लिखना पड़ता है, अनुवाद है वो दूसरी भाषा में कर दिया, तीसरी भाषा में कर दिया, उन अनुवाद के पीछे राज का, पैसों का जोर रहा है, इसमें अनुवाद हुआ है। गीता पर पैसा और राज की आवश्यकता नहीं, गीता तो खुद ऐसी है जो ठीक पढ़े तो उसको भी लिखने का, पढ़ने का मन करेगा तो परवश और गीता के वश में होकर गीता के टीकाएं लिखी है। यह गीता की विलक्षणता है, अलौकिकता है। नारायण नारायण गीता पर ज्ञान मार्ग की टीकाएं कही है, भक्ति मार्ग की टीकाएं कही है, योग मार्ग की टीकाएं बहुत कम है। आता है कर्म रहस्य, आता है कर्मयोग तत्व है, कर्मयोग रहस्य, परंतु उससे भी विलक्षण बात है गीता में, बड़ी अलौकिक बात है। कर्मयोगी, भक्ति योगी, ज्ञान योगी, तीनों योगों की बात बड़ी विलक्षण अलौकिक ढंग से कही है भगवान ने। ज्ञान मार्ग के भी उसके अनुसार जल्दी से प्राप्त कर सकता है, भक्ति मार्ग भक्ति कर सकता है, योग मार्ग योग अनुष्ठान कर सकता है। बड़ी सुगम बातें बताई जीव के कल्याण के लिए। इस वास्ते गीता का अध्ययन करो, पढ़ो। टीका है साधक संजयनी है, तत्ववेदनी टीका गीता प्रेस निकली है, रामानुज भाष्य भी निकला है, शांकर भाष्य भी निकला है। वे भी आप गीता पढ़ो, गीता प्रेस पुस्तक मिलती है, तो गीता के आपकी मर्जी वैसे टीका पढ़ो, मर्जी वैसे अनुष्ठान करो, कल्याण होगा इसमें संदेह नहीं है। नारायण 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 सीधी सादी बात है, भगवान है, भक्ति हमारी शुरू है। भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मान लो, बेटा मान लो, पति मान लो, मित्र मान लो, चाहे स्वभाव मान लो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, वो जैसे मान लो ऐसे ही मैं वैसे ही हो जाता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा है। तो सुगम पंथ है, पंथ बड़ा सुगम है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। अंत में विचित्रता क्या निकलती है वो थोड़ी सी बात बता दूं आपको। इन योगों के द्वारा मानो भक्ति ज्ञान योग ये स्वाभाविक है। हम लोग संसार को तो स्वाभाविक मानते हैं, और ज्ञान भक्ति योग इनको हम कृत्रिम मानते हैं, मन अभ्यास किया जाता है। गीता कहती है तुम्हारा सहज स्वभाव है, कर्म योग भी सहज है स्वाभाविक है, ज्ञान योग भी स्वाभाविक है सहज है, भक्ति योग भी स्वाभाविक सहज है, स्वतः प्राप्त है ज्ञान के द्वारा, भक्ति द्वारा, कर्म के द्वारा स्वतः प्राप्त है। ऐसी विलक्षण बात भगवद गीता में बताई है, स्वाभाविक। तो स्वाभाविकते में पहुंचना है अपने को, संसार में अस्वाभाविकता है, संसार का संबंध बनावटी है और मिटने वाला है, भगवान का संबंध सदा स्वाभाविक है और टिकने वाला है, क्योंकि स्वतः है ये संबंध स्वाभाविक है। तो सब सहज अवस्था पहुंच जाएंगे, उत्तम सहज अवस्था, सहज अवस्था में पहुंच जाएंगे, कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से, उत्तम सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, ये ध्यान मध्य में कनिष्ठा शास्त्र चिंता केवल ये कनिष्ठ है, और तीर्थ यात्रा उसे भी छोटी है। इस तरह से तो गीता की एक सहजावस्था है, वो गीता बताए कर्म योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा भगवान वहां ले जाना चाहते हैं, जहां उनको करना कुछ नहीं है, एक तत्व को प्राप्त हो जाए, मस्त हो जाए, और सब बातों को जानता है। सब बातें जानने के लिए भक्ति योग बताया है, ज्ञान है योग सब जान जाओगे भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ज्ञान को जान लो, ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, योग के द्वारा योग हो जाना, योग से मुक्ति हो जाएगी। परंतु भक्ति योगी को सब ज्ञान हो जाता है, ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, समग्र मान क्या है, समग्र रूप को जान लेगा, ये भक्ति में विलक्षणता है। परंतु ज्ञान मार्ग में चलने वालों को कोई भक्ति की जरूरत हो ऐसी कोई जरूरत नहीं, रुचि हो तो भक्ति हो जाती होंगी, कोई भी भक्ति में जा सकते हैं, रुचि की बात है, कमी नहीं है। योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में कोई कमी नहीं है, सब अच्छे हैं, सबसे परमात्मा प्राप्ति होती है, ऐसा गीता कहती है। अब इसमें कोई बात आपके शंका उठती हो, संदेह होता हो, वो पूछ लो, कह रहा उतर कर पूछना भाई। निर्गुण स्वरूप है वो सहज स्वाभाविक है, सगुण रूप है वो कठिन है, और मार्ग भक्ति का सुगुण है ज्ञान का कठिन है। हाँ रहेगा कैसे, तो अक्षर है, नित्य है, परिपूर्ण है, ऐसा कहने में सुगुण दिखता है। भक्ति मार्ग में कोई कहते है भगवान अगर सर्वज्ञ है तो सीता के लिए ढूंढते क्यों फिरे, उत्तर दो इसका। वहां ऐसी ऐसी तर्क आती है जब उतरना कठिन पड़ता है, बुद्धि में आती नहीं, और ज्ञान मार्ग में तर्क और ठीक बता सके, ये सुगम है। मन उनके स्वरूप को जानने में ये भगवान है साक्षात, ऐसा लोग नहीं जानते। भगवान कृष्ण को भगवान समझ ले ऐसे आदमी भगवान के अवतार समय में तो बहुत कम थे, आज उसकी अपेक्षा उनको भगवान मानने वाले बहुत है, पर भगवान मानने में खंडन करने वाले भी बहुत है। ज्ञान मार्ग का जल्दी जल्दी खंडन नहीं करता, भक्ति मार्ग वाले इसको अच्छा नहीं मानते हैं, परंतु खंडन नहीं होता। ज्ञान मार्ग तर्क से चलता है, कि ज्ञान मार्ग विवेक से चलता है, और भक्ति मार्ग श्रद्धा से विश्वास से चलता है। विश्वास होने में कठिनता है, तर्क से पूछे तो खुश होता है, ये तर्क की प्रधानता, विवेक की प्रधानता है, उसमें श्रद्धा की प्रधान, भक्ति मार्ग में श्रद्धा की प्रधान, श्रद्धा विश्वास, भिन्न विश्वास भगति नहीं ते विनिद्र में राम। तो भिन्न विश्वास भक्ति नहीं, भक्ति में विश्वास करना पड़ता है, विश्वास क्या जो दिखता नहीं है मानना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में तो विवेचन कर तो दिखता है, ये बात है। भक्ति मार्ग दिखे नहीं, भगवान कृष्ण दिखते दिखते नहीं, मानना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में तो दिखेगा सत रसत नित्य अनित्य दिखेगा, मार्ग में दिखने पर भी प्राप्ति में कठिनता है। भक्ति को तो भगवान अपना माँ है, मेरा बाप है, मेरा पुत्र है, भगवान को पुत्र मान लो, भाई मान लो, पति मान लो, मित्र मान लो, मालिक मान लो, मान कर जी मान्यता विश्वास की मुख्यता, इस वास्ते सुगम पड़ता है मार्ग। कुछ भी मानने की आदत सबको है ही, वो केवल संसार की तरफ न रखे भगवान की तरफ कर लो, अपना वही आदत वही स्वभाव भगवान की तरफ, अरे ज्ञान वैराग्य सब हो जाता है। भक्ति के बेटा है ज्ञान और वैराग्य, भक्ति है माँ, ज्ञान वैराग्य बेटा, माँ स्वरा पे आ जाएगा, माँ को छोड़कर छोरा कहाँ रहेगा। शुक्रिया की बात है, ये महासंकीर्तन का सिद्ध है, वहां महासंकीर्तन हुआ है। भागवत की कथा सुनी है, गोकर्ण जी महाराज ने धुंधुकारी के उद्धार के लिए, तो उसका उद्धार हो गया नहीं हो तो दोबारा कहेगा महाराज इसका उद्धार हो गया, हमारे क्यों नहीं हुआ, कि तुमने एकाग्रता से नहीं सुनी, तो हम सुने से दोबारा सुनाई, उसमें संकीर्तन हुआ, उस महासंकीर्तन में भगवान भी आए, ज्ञान वैराग मेरा जी उठे एकदम नाचने लग गए। भक्ति तो आनंद में थी, भक्ति का तो जवान रूप था छोटी, और ये ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए सफेद दाढ़ी वाले, ऐसे माँ चिंता करती है क्या करूं, मेरे बेटा इतने बूढ़े हो गए, फिर संकीर्तन किया तो सब जग गए, सब ठीक हो गए। अर्जुन राग करता है, उद्धव जी जो झिंझ बजाते हैं, और इंद्र जो मृदंग बजाता है, और वहां सुखदेव जी भाव बताते हैं, संकीर्तन है उसका ये चित्र है। बहुत मस्ती हो गया, आनंद हो गया, इस तरह से भगवान नाम का कीर्तन किया जाए मस्त होकर के, बहुत विलक्षणता होती है। आप साहब भाई प्रेम पूर्वक भगत कीर्तन करते हो, ना हम बसामे वैकुंठ है योगी नाम हृदय न चह मद भक्ता यत्र गायंती तत्र, प्रेम से गाते तो वहां मैं रहता हूँ आनंद उछलने लगते, सच्चे हृदय से गाने वाले हो, प्रेम कीर्तन करने वाले हो, सब आनंद विभोर हो जाते, ऐसी विलक्षण बात, ये तो प्रत्यक्ष बात होती है, भक्ति विलक्षणता प्रत्यक्ष है।